हरे कृष्णा। इलेक्शन में वोटिंग करना ये भक्तों की सामाजिक जिम्मेदारी है, इस विषय पे हम संक्षिप्त में आज चर्चा करेंगे। तो अभी इलेक्शन का माहौल चारों ओर है, इलेक्शन चालू भी हो गए, कई जगह पे हो गए हैं, कई जगह पे बाकी है। तो कभी भक्तों में सवाल आता है कि क्या हमें इलेक्शन में वोट करना चाहिए, यदि वोट करना चाहिए तो किसके लिए वोट करना चाहिए। हम शास्त्रों के आधार पर, कृष्ण भावनामृत तत्वों के आधार पर हम क्या फैसला कर सकते हैं इसके बारे में। तो इसके संदर्भ में एक विचार ऐसे हो सकता है कि ये सारा भौतिक जगत क्षणिक है और भौतिक जगत में जो भी बदल होते हैं उनसे वास्तव में कुछ बदल नहीं होता है, और एक ही सारे समस्याओं का हल है कि हमें भक्ति करके भगवत धाम लौट जाना है। इसीलिए भौतिक समस्याओं के हल के लिए हमें कुछ भौतिक बदल में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है और भौतिक बदलों से ज़्यादा कुछ अपेक्षा करने की भी ज़रूरत नहीं है। और प्रभुपाद जी का भी ऐसे प्रभुपाद जी के ऐसे वचन है जो कोई बोल सकता है इसके लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने जब 1970 की शताब्दी की उस 10 सालों में, उस दशक में जब कांग्रेस पावर से जा रहे थे, दूसरा पक्ष पावर में आ रहा था, जनसंघ था तभी, तो तभी काफ़ी ही लोगों में उम्मीदें बढ़ गई थी कि अभी परिवर्तन हो जाएगा, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी तभी लोगों ने कहा एक चर्चा में कि हमें राजनैतिक एडजस्टमेंट, राजनीतिक बदल से हल नहीं होने वाला है, हमें आध्यात्मिक एडजस्टमेंट, आध्यात्मिक बदल करना चाहिए, और उन्होंने कृष्ण भावना पे जोर दिया। तो ऐसे जो प्रभुपाद जी के वचन हैं इनको दोहरा के कोई बोल सकता है कि इलेक्शन में हमें जाने की के बारे में विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़रूर ऐसे वचन प्रभुपाद जी ने की है, पर प्रभुपाद जी के दूसरे प्रकार के वचन भी है। प्रभुपाद जी ने स्वयं भक्तों को राजनीति में प्रवेश करने के लिए बताया, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और इन गॉड वी ट्रस्ट, भगवान में हम भगवान में विश्वास करते हैं, इस नाम का एक पक्ष भी उन्होंने भक्तों को चालू करने को बोला, और भक्तों को उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया। पर जब प्रभुपाद जी ने देखा कि जो आर्थिक ज़रूरत जो उसके लिए है इलेक्शन में खड़े रहने के लिए, कैंपेन करने के लिए जो काफ़ी धनराशि लग रही है, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो कृष्ण भक्ति के प्रचार के धनराशि है वो इसके लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ये दल चालू कर सकते हैं और मैं उत्साही हूँ उसके बारे में, पर आप मुझसे या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ से कोई आर्थिक मदद की अपेक्षा न करें। और फिर उसके बाद में, क्योंकि ये भक्त के पास और कोई आर्थिक मार्ग नहीं थे, तो इसलिए वो दल ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाया। पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो सामाजिक परिस्थिति थे उसके बारे में इनडिफरेंट, मतलब उसके बारे में लापरवाह नहीं करते थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में भी लिखते हैं कि किस तरह से समाज भी गलत दिशा में जा रहा है, समाज को सही दिशा में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और प्रभुपाद जी जो आदर्श राजा है वह कैसे धर्म रखता था उसके बारे में बताया करते थे। तो प्रभुपाद जी यदि आजकल जो लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, उसकी ज़्यादा पुष्टि नहीं करते थे प्रभुपाद जी, पर ऐसे नहीं है कि उसका खंडन करते थे। प्रभुपाद जी उसमें भी सहभागी होने के लिए भक्तों को कहा था, और उन्होंने कहा था कि अगर इसके द्वारा हम धर्म को प्रस्थापन करने में मदद कर सकते हैं तो ये भी अच्छा है। तो इसीलिए मतलब प्रभुपाद जी जो परिस्थिति है उसमें कैसे हम कृष्ण भावना का प्रचार कर सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं, उसके लिए वह सतर्क थे। तो अगर लोकशाही के माध्यम से धार्मिक तत्वों को और बढ़ाया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, तो फिर प्रभुपाद जी उसके प्रतिकूल नहीं थे। तो हमें समझना चाहिए कि हमें ना तो इस भौतिक जगत को बहुत ही बढ़ा चढ़ा देना है कि अरे यहीं पे सब कुछ एक बदल हो जाएगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, इलेक्शन में ये पार्टी जीत जाएगी, नेता आ जाएगा तो सारी समस्याएं का हल हो जाएगा। तो ये एक विचारधारा है, ये भोग की विचारधारा है, ये कर्म मार्ग की विचारधारा है, क्या कि हम थोड़ा परिवर्तन कर लेंगे भौतिक स्तर पर ठीक हो जाएगा। और दूसरा विचारधारा है वो त्याग की विचारधारा है, ज्ञान मार्ग की विचारधारा है कि ये भौतिक जगत केवल बंधन का ही कारण है, दुखों का कारण है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमको यहाँ से सिर्फ निकल जाना है। तो जो भक्ति का मार्ग है वो भोग का भी नहीं है, त्याग का भी नहीं है। वो क्या है कि हमें हमें घुसना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है उसको, हमें जोड़ना है उसको। हमें भौतिक जगत में घुस के उसके बंधन में नहीं फंसना है, ना कि हमको छोड़ के जंगल में चला जाना है। हमें भौतिक जगत में रह के ही भक्ति करनी है, तो भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में जोड़ना है। इस तत्व को युक्त वैराग्य कहते हैं। तो युक्त वैराग्य मतलब जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है उसको त्यागना यह अनुचित है, उसको हमें भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। तो युक्त वैराग्य के अनुसार ही हम तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। लोग जो सन्यासी है वह भी कभी एयरप्लेन में प्रवास करते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, क्योंकि प्रचार करने के लिए वो अनुकूल है, तो उसका स्वीकार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने भी स्वयं ऐसे किया था। तो फिर तो क्या ये लोकशाही जो है और उसमें इलेक्शन चुनाव की प्रक्रिया है, इसको हम युक्त वैराग्य के पद से कैसे देख सकते हैं? हम एक समाज में रह रहे हैं और भारतीय समाज जो है वह धर्म की आज की दुनिया में प्रधान भूमि है। प्राचीन काल से भारत को आर्यवर्त कहा जाता था, धर्म भूमि कहा जाता था। तो प्रभुपाद जी ने विश्व भर प्रचार किया, पर अपने जीवन का अधिकांश समय उन्होंने प्रचार के दौरान, मतलब इस्कॉन की स्थापना के बाद, उन्हें भारत में ही गुजारा, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत में ही अगर हम प्रचार अच्छे से कर सकते हैं तो फिर बाकी देशों में दूसरे भक्त प्रचार कर सकते हैं, पर भारत में वे प्रचार करेंगे तो भारत में वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ को, कृष्ण भक्ति को और दृढ़ बना सकते हैं, और यहाँ से धर्म का प्रचार फिर सारे विश्व भर हो सकता है। तो यहीं पे पहले से वैदिक संस्कृति है, यहाँ पे आज भी वैदिक संस्कृति कुछ मात्रा में जरूर है, इसीलिए यहाँ पे धर्म का प्रचार करना महत्वपूर्ण है। तो अभी धर्म का प्रचार अलग-अलग स्तर पे होता है। एक अगर हम उसको वर्तुल गोलाकार चीज देखते हैं तो एक गोल है जिसमें हम शुद्ध भक्ति करते हैं, आप ये जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, और भक्ति के मार्ग से हम भगवान को जाते हैं। तो कुछ लोग इस चक्र में आएंगे, इस गोल में आएंगे। तो इसके अलावा कुछ लोग हैं जो इतनी तीव्रता से भक्ति नहीं करते हैं, पर भक्ति के अनुकूल है वो, और वो मंदिर में उत्साह उत्सवों के लिए आते हैं, कुछ विशेष जो त्योहार विशेष अवसर होते हैं उनके लिए आते हैं, और वो मंदिर मंदिर और भक्ति की सराहना करते हैं, उसके अनुकूल है, पर वो खुद साधक के रूप में नहीं है वो। तो ऐसे लोग अगर समाज में होते हैं तो उससे भक्ति का प्रचार करना आसान जाता है। इसके परे है एक और बड़ा सर्कल है, गोल है, जिसमें लोग हैं जो धर्म के बारे में कुछ परवाह नहीं करते हैं, और तुम्हें करना है तुम करो, हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे हमें इसमें मत घुसाओ तुम। और इससे और है कि जो धर्म के विपरीत है, और ऐसे लोग जो है अगर वो समाज में प्रभावशाली बन जाते हैं, वो अगर नेता बन जाते हैं, तो धर्म का प्रचार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ था कई देशों में, सोवियत रशिया में हमारे भक्तों को बहुत परेशानियां हुई, उनको कई बार जेल में डाला गया, उनको बहुत तड़पाया गया कि भक्ति छोड़ दो आप। तो अगर सरकार जो है भक्ति के प्रतिकूल है तो फिर वो उससे काफी खराब परिणाम हो सकता है भक्ति के, न केवल भक्ति के प्रचार के लिए पर भक्ति के अनुशीलन के लिए भी। स्वयं को भक्ति करनी है उसमें भी प्रतिकूल हो सकता है वो परिस्थिति। तो इसीलिए वैसी परिस्थिति न आने देना यह भी भक्तों की जिम्मेदारी है। तो भक्तों की एक जिम्मेदारी है, आध्यात्मिक जिम्मेदारी है कि खुद भक्ति करना और भक्ति का प्रचार करना। पर हम एक समाज में रह रहे हैं और समाज को भक्ति के प्रतिकूल न होने देना, जहां तक हम कर सकते हैं उतना उसके लिए प्रयास करना, यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है। और युक्त वैराग्य की मदद से अगर हम इसमें कुछ कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। तो अगर हम भारत की आज की राजनैतिक परिस्थिति देखते हैं तो फिर भारत में संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो जो भाव है वह वैदिक संस्कृति में भी था, क्योंकि वैदिक संस्कृति में क्या था कि अलग अलग मार्ग थे, कर्म मार्ग था, ज्ञान मार्ग था, भक्ति मार्ग था, और सबको सब प्रकार के साधकों को अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार साधना करने का मौका दिया जाता था। शायद 6 प्रकार के दर्शन भी थे और उसमें भी वाद होता था, पर क्या होता है, हर एक व्यक्ति को जो अपने अपनी जो वृत्ति है उसके अनुसार जो जो करना है, साधन करनी है, उसको करने का मौका दिया जाता था। उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो प्राचीन वैदिक संस्कृति थी वो, और धर्मनिरपेक्षता जो आज है उसमें एक प्रकार की समानता है। क्या है कि धर्मनिरपेक्षता, अगर हम निरपेक्षता अगर हम कहते हैं उसका अर्थ कि सबको अपने अपने जिसको भी जो धर्म का पालन करना है, जिसको भी साधना करनी है, वो करने के उसको मौका देना चाहिए। तो वो भाव वैदिक शास्त्रों में भी था, वैदिक संस्कृति में भी था एक तरह से, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की साधना करते थे। पर आजकल के समाज में धर्मनिरपेक्षता का भाव कुछ अलग ही हो गया है दुर्भाग्यवश से। तो जो धर्मनिरपेक्षता है वह काफी हद तक धर्महीनता की तरह चली जाती है। धर्महीनता मतलब नास्तिकवाद, या तो जो नास्तिकवाद जो है, मैं सोवियत रशिया में था, वहां पे सेक्युलरिज्म और एथीज्म आर क्लोज बेड फेलोज, कि धर्मनिरपेक्षता से अगर नास्तिकता तक तो जाना है तो ज्यादा अंतर नहीं है वो, और कई समाजों में इस तरह से हो जाता है। तो वैसे अगर भारत में हो जाता है कि जो धर्म का पालन करना चाहते हैं उनको खंडन किया जाता, उनको उनका खंडन किया जाता है, उनको परेशानी की जाती है, तो फिर धर्म का पालन करना, धर्म का प्रचार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति आएगी और आने की संभावना काफी है आजकल के समाज के प्रवाह को देखते हुए। तो फिर भक्त जो धर्म भूमि है वहां पे ही धर्म की ग्लानि बहुत हो जाएगी, और तो वह बहुत ही दुर्भाग्य की बात हो जाएगी, और इसको टालना ये हम सबका कर्तव्य है। तो धर्म निरपेक्षता के नाम पे धर्महीनता या नास्तिकता नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई कोई राजनीतिक दल ऐसे है जो नास्तिकता की ओर जाते हैं या तो धर्म के विरुद्ध जाते हैं, तो उनका विरोध करना ये भी हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी हो जाती है। तो अभी दूसरी प्रकार की एक संकीर्णता है कि धर्म को पालन न करने देना, या धर्मनिष्ठता के साम निरपेक्षता के नाम में के जो धर्म है उसके उसके खिलाफ जाना। पर दूसरा है कि जो है धार्मिक संकीर्णवाद है। तो क्या है, हम एक ही धर्म करेंगे, दूसरा कोई धर्म नहीं करेंगे, तो ऐसा संकीर्णवाद है उसका आजकल के समाचार पत्रों में, टीवी पे उसका बहुत खंडन होता है। और यह भी जो है कि हम हमारा ही धर्म सही है और दूसरे सब धर्म गलत है, कोई और दूसरे धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, हम उनको पालन नहीं करने देंगे, हम उनको भारत में रहने नहीं देंगे, ऐसा कोई बोलता है, तो यह भी वैदिक संस्कृति का भाव नहीं है। तो ऐसा भी उचित नहीं है, वो भी खतरा है एक तरह से। पर क्या होता है, कई बार इस प्रकार का विचारधारा जो धर्म के पालन करते हैं या जो उनका नहीं होता है, पर उनके विचारों को ऐसे मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको गलत तरह से बतलाया जाता है, कि उन जो लोग केवल धर्म का संरक्षण करना चाहते हैं उनको ऐसे बताया जाता है कि ये दूसरे धर्मों पर नाश करना चाहते हैं, तो ऐसा सत्य नहीं है। तो हमें भक्तों के रूप में देखना चाहिए कि अगर मुझे कि क्या मैं जो धर्म के पालन और धर्म के प्रचार के लिए अनुकूल कोई परिस्थिति लाने में मदद कर सकता हूँ, तो मैं जो वोट करूंगा तो उससे क्या कर रहा हूं मैं कि समाज में किस प्रकार का वातावरण होता है उसमें उसको फैसला करने में मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो हम इस तरह से युक्त वैराग्य की पद्धति से हमारे धर्म के प्रचार पालन प्रसार के अनुकूल परिस्थिति रखने के लिए हम एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में हम वोटिंग कर सकते हैं, और ऐसे करते समय हम ये विचार कर सकते हैं कि कौन सा धार्मिक पक्ष है, कौन सा पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है जो धर्म के अनुकूल है, और उनको हम हमारी भक्ति करना चाहते हैं, तो भक्ति के अनुकूल जो है, या जो हम जाते हैं, भक्ति शुद्ध सत्व में होती है, सत्वगुण जो होता है, सत्वगुण में भी अगर कोई राजनीतिक दल है वो ऐसे मूल्यों का अनुशीलन करते हैं, का प्रस्थापन करना चाहते हैं जो सत्वगुण में है, तो वो भी भक्ति के लिए अनुकूल है, तो उसके अनुसार हम हमारा मत दे सकते हैं, और इस तरह से हम हमारी सामाजिक जिम्मेदारी निभा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।